पृष्ठ संख्या 140। जब विदेश सचिव ब्रायन ने राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन के विरोध प्रकट करने के बावजूद भी एक ऐसा विधेयक पारित किया जिसके अनुसार राज्य में जापानियों के कृषि योग्य भूमि पर अधिकार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, तो सन 1913 में पुनः कैलिफोर्निया के विधान के बारे में कुछ विवाद उठ खड़ा हुआ। अब वे केवल अल्पकालिक पट्टे पर ही भूमि ले सकते थे। इसी प्रकार के विधान की 1917 में ओरिगॉन और इदाहो में भी चर्चा चली थी, लेकिन वाशिंगटन सरकार के अनुरोध पर इसे वापस ले लिया गया। जापानियों के अमेरिकी नागरिकता प्राप्त करने के अधिकार को स्वीकार नहीं किया गया, लेकिन उन जापानियों के ही नागरिकता के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई जिनका जन्म अमेरिका में हुआ था। अमेरिका के इस विधान ने जापानियों की भावनाओं को भीषण आघात पहुंचाया। इसका एक कारण तो यह था कि इस विधान को पारित करते समय जापानियों की भावनाओं का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा गया था, और दूसरे ऐसा प्रतीत होता था कि उनके प्रति अवांछित भेदभाव बरता गया है। जापान एवं अमेरिका के बीच संघर्ष का एक कारण सुदूर पूर्व में दोनों देशों के हितों में विरोध होना था। सन 1898 में अमेरिका ने फिलीपींस पर कब्जा कर लिया और उसी साल हवाई को भी अपने प्रदेश में मिला लिया। अमेरिका के दृष्टिकोण में यह परिस्थितियों का एक अनिवार्य परिणाम था। जापानियों को कुछ ऐसा प्रतीत हुआ कि चीन के प्रति अमेरिका के कुछ निहित इरादे हैं। कुछ ही समय बाद अमेरिका ने चीन में मुक्त द्वार के सिद्धांत का पोषण शुरू कर दिया, जिससे जापान के संदेह को और अधिक पुष्टि मिली। इस सिद्धांत से 1905 में मंचूरिया में जापान द्वारा पोर्ट्समाउथ संधि के अधीन प्राप्त विशिष्ट हितों को खतरा था। इसी समय अमेरिका के पूंजीपतियों ने चीन से एक रेलमार्ग के लिए रियायतें मांगी जो मंचूरिया में जापान की सड़कों के साथ प्रतिस्पर्धा करता, लेकिन टोक्यो सरकार के विरोध के कारण यह मांग अस्वीकार कर दी गई। इसके कुछ समय पश्चात मंचूरिया में जापान द्वारा निर्मित इन सड़कों को खरीदने और उन पर परिवहन व्यवस्था को एक अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट द्वारा संचालित करने के लिए नॉक्स का प्रस्ताव सामने आया। अमेरिका की दृष्टि में इसका प्रायोजन चीन में मुक्त द्वार के सिद्धांत तथा चीन की स्वाधीनता को सुरक्षित रखना था, लेकिन जापान को ऐसा प्रतीत हुआ कि यह प्रस्ताव पूर्णतः स्वार्थ भावना से प्रेरित है और इसका उद्देश्य उसे प्रयत्नपूर्वक अर्जित विजयों के फलों के उपभोग से वंचित करना है। इसके अनंतर ही अमेरिकियों ने चीन में पूंजी लगाना शुरू कर दिया था। अमेरिका के बैंकर चीन को षड्देशीय ऋण देने वाली परिषद में सम्मिलित हो गए, लेकिन बाद में राष्ट्रपति विल्सन ने उन्हें ऐसा करने से हतोत्साहित किया। चीन के तेल वाले क्षेत्रों पर स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी ने आंशिक एकाधिकार प्राप्त कर लिया था, यद्यपि बाद में यह एकाधिकार उसे छोड़ देना पड़ा। इसी समय अमेरिका की एक कंपनी ने जापान द्वारा अधिकृत फार्मोसा द्वीप के सामने फुकियेन प्रांत में विशाल गोदी के निर्माण के संबंध में बातचीत शुरू की। 1916 में कुछ अमेरिकी पूंजीपतियों ने चीन में रेल के निर्माण के लिए ऋण देने का प्रस्ताव किया जो शांतुंग में जापान के हितों के साथ टकराता। प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिकी जनता चीन पर जापान की आक्रामक कार्रवाइयों के खिलाफ थी और सन 1917 में मुख्य रूप से अमेरिका के दबाव के कारण ही चीन ने जर्मनी से झगड़ा मोल लिया। सन 1918 से 1920 के बीच साइबेरिया मित्र देशों के अभियान में अमेरिका ने महत्वपूर्ण भाग लिया था और पेरिस सम्मेलन में शांतुंग में जर्मनी के भूतपूर्व अधिकृत प्रदेश पर जापान के दावे का वही प्रमुख विरोधी था। 1920 में अमेरिका ने चीन को दिए जाने वाले विदेशी ऋण पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए एक नए वित्तीय संगठन का निर्माण किया और जापान को तभी इस संगठन का सदस्य बनाया गया जबकि उसने मंचूरिया और पूर्वी भीतरी मंगोलिया को संगठन के कार्य क्षेत्र में सम्मिलित करने पर की गई अपनी आपत्ति को वापस ले लिया। अमेरिका के सामान्य नागरिक को उपयुक्त बातें युक्ति संगत एवं न्यायपूर्ण प्रतीत हुई। एशिया में किसी भी तरह के साम्राज्यवादी इरादे का उसे ज्ञान नहीं था। वह तो केवल सभी देशों को मुक्त द्वार के समान अवसर प्रदान करने के पक्ष में था। कुछ जापानियों की दृष्टि में अमेरिका के इस पश्चिम की ओर विस्तार का एक अनिष्ट पहल भी था। लगभग 100 वर्षों की अवधि में ही अमेरिका ने मिसिसिपी नदी और रॉकीज को पार करके प्रशांत की ढलान पर अपना अधिकार कर लिया था और चीन के साथ जापान के युद्ध के बाद हवाई और फिलीपींस पर अधिकार करके वह प्रशांत को पार कर चीन की खानों और रेलों के निर्माण में धन लगाने की कोशिश कर रहा था तथा सुदूर पूर्व की राजनीति में हस्तक्षेप करने लगा था। इसके बाद उसके आगे वह कुछ भी कर सकता था। अमेरिका के बहुत से लोग सुदूर पूर्व एवं प्रशांत महासागर के प्रदेशों में जापान के इरादों के प्रति सशंक थे। उन्हें इस बात की आशंका थी कि जापान फिलीपींस और हवाई तथा अमेरिकी महाद्वीप के कुछ भागों पर भी आधिपत्य जमाने के लिए किसी उचित अवसर की ताक में है। उन्होंने इस बात का भी संकेत दिया कि हवाई पर बसने वाले जापानियों की बड़ी संख्या उनके लिए खतरे का कारण है और उन्होंने मेक्सिको तथा मध्य एवं दक्षिणी अमेरिका में जापानियों की राजनीतिक चालों की अफवाहें भी सुनी। प्रशांत महासागर में जापान के जहाजी बेड़े के विकास को देखकर भी उनके मन में डर बैठ गया। जापान में नौ परिवहन के क्षेत्र में प्रगति हुई जबकि अमेरिकी नौ परिवहन की स्थिति डावाडोल थी। चीन के संबंध में जापान और अमेरिका के बीच जो मतभेद थे उनका अंशतः शमन कुछ समय के लिए पत्र व्यवहार द्वारा हो गया। यह पत्र व्यवहार 1917 की ग्रीष्म और शरद ऋतु में वाइकाउंट इशीई के नेतृत्व में जापान आयोग की अमेरिका यात्रा के फलस्वरूप हुआ था। इस संदर्भ में अमेरिका ने स्पष्टतया इस तथ्य को स्वीकार किया था कि प्रादेशिक समीपता के कारण दोनों देशों के बीच विशिष्ट संबंध स्थापित हो जाते हैं और इसलिए चीन में विशेषतः उन प्रदेशों में जो जापान के अधिकृत क्षेत्रों में के निकट आते हैं विशेषतः उन प्रदेशों में जो जापान के अधिकृत क्षेत्रों के निकट स्थित हैं जापान का विशेष स्वार्थ है। अमेरिका ने विश्वास दिलाया था कि जापान मुक्त द्वार के सिद्धांत का पालन करेगा और चीन की प्रादेशिक अखंडता और स्वाधीनता को स्वीकार करेगा। जापान ने इसे सहर्ष स्वीकार किया तथा अमेरिका के साथ ही इस बात की घोषणा की थी कि वह किसी भी सरकार द्वारा ऐसे अधिकारों एवं विशेषाधिकारों के अभिग्रहण का विरोधी है जिससे चीन की स्वाधीनता या प्रादेशिक अखंडता पर आँच आती हो अथवा जिससे किसी भी देश के नागरिकों अथवा अधीनस्थ लोगों को चीन के व्यापार एवं वाणिज्य के क्षेत्र में समान सुअवसर के पूर्ण उपयोग में बाधा पड़ती हो। इस समझौते के प्रति दोनों देशों में से किसी भी देश के समाचार पत्रों ने विशेष उत्साह प्रदर्शित नहीं किया। इस समझौते के संबंध में दोनों देशों के लोगों की यह धारणा थी कि उनके विदेश विभागों ने दूसरे देश की मांगों को आवश्यकता से अधिक सीमा तक स्वीकार कर लिया है। चीनियों ने इसकी कटु आलोचना की। इस समझौते से उन्हें लगा कि जापान के आक्रमणों के विरुद्ध उसके अंतिम संरक्षक राष्ट्र ने भी उनका साथ छोड़ दिया है और पिकिंग प्रशासन ने औपचारिक रूप से इस बात की सूचना दी कि उसे किसी ऐसे समझौते को मानने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता जिसमें वह स्वेच्छा से सम्मिलित न हुआ हो। जापान तथा अमेरिका के बीच विद्यमान मतभेदों के निराकरण में लैसिंग इशीई समझौते से विशेष सफलता न मिली। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के कुछ वर्षों में तथा पेरिस सम्मेलन एवं वारसाए संधि के एकदम बाद के कुछ वर्षों में अमेरिका और जापान के बीच मतभेदों के कुछ और कहीं अधिक भयंकर कारण सामने आए।
जिसने दोनों देशों के बीच चले आ रहे अशांत वातावरण को और अधिक अशांत बना दिया। मित्र देशों के साइबेरिया अभियान ने दोनों देशों में एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या और संदेह की भावना पैदा कर दी। जापान इसलिए शंकाकुल था कि उसने अपने प्रदेश के निकटवर्ती एशियाई प्रदेश में अमेरिका के सक्रिय हस्तक्षेप के विरुद्ध नाराजगी प्रकट की थी, और अमेरिकी इसलिए शंकाकुल थे कि उनका कहना था कि जापान के सैन्य अधिकारियों ने उन पर अविश्वास किया है और वे इस अभियान से लाभ उठाकर साइबेरिया के कुछ भाग पर अस्थायी आधिपत्य जमाना चाहते हैं। वर्साई संधि द्वारा जापान को शांतुंग में जर्मनी द्वारा भूतपूर्व अधिकृत प्रदेश मिले थे, जिसकी अधिकांश अमेरिकी जनता ने खुले तौर पर निंदा की और इसे इस अप्रिय संधि का सर्वाधिक आपत्तिजनक अंश घोषित किया। इस अमेरिकी आलोचना की जापान में तीव्र प्रतिक्रिया हुई। अमेरिकी सरकार ने प्रशांत महासागर में स्थित यैप द्वीप पर जापानी आधिपत्य का विरोध किया। यह द्वीप एक महत्वपूर्ण केवल केंद्र था तथा कैरोलाइन द्वीप समूह का एक अंग था, जिस पर पेरिस में राष्ट्रसंघ के एक प्रदेश द्वारा उसे शासन करने का अधिकार प्राप्त हुआ था। अमेरिकी सरकार का दावा था कि राष्ट्रपति विल्सन ने इसके संबंध में कुछ विशिष्ट व्यवस्था की, इसलिए इसका अंतर्राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। साइबेरिया में अमेरिकी रियायत के समाचार ने जापान में क्रोध की लहर पैदा कर दी, और जापान में अमेरिका के प्रति जो कुछ थोड़ा बहुत सद्भाव बाकी था, वह भी अमेरिका द्वारा चीन में अधिकाधिक व्यापारिक विस्तार से चीन सरकार के साथ बेतार के तार की व्यवस्था संबंधी करार से और चीन को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए अमेरिका द्वारा संचालित संगठन की स्थापना से समाप्त हो गया। दोनों ही देशों में बहुत से लोगों का विचार था कि निकट भविष्य में युद्ध अवश्यंभावी है। इस बात से ब्रिटेन के अधिकारी भी चिंतित थे, क्योंकि आंग्ल जापानी संधि के कारण केवल ब्रिटेन की ही इस युद्ध में फंसने की संभावना न थी, बल्कि इसके साथ साथ कनाडा और ऑस्ट्रेलिया को भी इसमें सम्मिलित होना पड़ता, जिसके फलस्वरूप ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर तनाव पैदा हो जाने की संभावना थी। यह आवश्यक था कि विद्यमान विवादों का कोई शांतिपूर्ण एवं तुरंत हल निकाला जाए। वाशिंगटन सम्मेलन 1921 से 1922, अमेरिका और जापान के बीच आसन्न संघर्ष तथा प्रशांत प्रदेश में विरोधी नीतियों और नौसैनिक युद्ध सामग्री में वृद्धि के परिणाम स्वरूप संभावित युद्धों को रोकने के लिए अमेरिकी सरकार ने एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन वाशिंगटन में 1921 से 1922 की शरद ऋतु में हुई, जिसमें ब्रिटिश साम्राज्य, फ्रांस, जापान, चीन, बेल्जियम, इटली, नीदरलैंड्स, पुर्तगाल तथा अमेरिका के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन ने कुछ समय के लिए देशों के पारस्परिक संघर्षों के कारणों को दूर कर दिया। इसने न केवल जापान और अमेरिका के बीच विद्यमान मतभेदों के कारणों का निराकरण किया, अपितु जापान एवं चीन के आपसी विवादों का भी निपटारा करने में मदद की। इसी समय एक संधि की गई, जिसके द्वारा नौसैनिक युद्ध सामग्री में कटौती कर दी गई और प्रशांत महासागर के कुछ क्षेत्रों में और अधिक किलेबंदी पर रोक लगा दी गई। अमेरिका, ब्रिटिश साम्राज्य, फ्रांस और जापान एक चतुर्देशीय संधि द्वारा इस बात पर सहमत हो गए कि यदि भविष्य में प्रशांत क्षेत्र में उनके अधिकृत द्वीपों के बारे में कोई विवाद हो और उसका निपटारा राजनयिक तरीकों से न हो सके, तो उस पर विचार करने के लिए चारों देशों का संयुक्त सम्मेलन बुलाया जाए। साथ ही उन्होंने इन अधिकृत द्वीपों पर एक दूसरे के अधिकारों का आदर करने का भी वचन दिया। इस संधि में आंग्ल जापानी संधि को समाप्त करने की भी व्यवस्था थी। इसी समय नौ राष्ट्रीय समझौते ने चीन की प्रादेशिक अखंडता और मुक्त द्वार के सिद्धांत के परिपालन के अंतर्राष्ट्रीय वचन को फिर से दोहराया। एक और संधि द्वारा चीन की शुल्क पद्धति में भी सुधार करने का वचन दिया गया। इस सम्मेलन में कई और प्रस्ताव भी रखे गए थे जिनका उद्देश्य चीन की स्वायत्तता पर से विदेशी नियंत्रण में कमी करना तथा चीन में संबंधित संधियों, इकरारनामों तथा इसी के अन्य दस्तावेजों को प्रकाशित करना था। इसी का लाभ उठाकर जापान और चीन ने अपने शांतुंग प्रदेश संबंधी विवादों को भी हल कर लिया। शांतुंग प्रांत में जो प्रदेश जापान के प्रभुत्व में थे वे कुछ ऐसी शर्तों पर चीन को हस्तांतरित कर दिए गए जो दोनों ही पक्षों को मान्य थी। जापान और अमेरिका ने भी एक समझौते के द्वारा यैप द्वीप के संबंध में अपने विवादों का निपटारा कर लिया। चूंकि लैसिंग ईसीई समझौते की अवधि समाप्त हो चुकी थी इसलिए 30 मार्च 1923 को इस संधि को निष्प्रभाव घोषित कर दिया गया। वाशिंगटन सम्मेलन में हुई बातचीत के फलस्वरूप प्रशांत प्रदेश में युद्ध का खतरा बहुत हद तक कम हो गया था। इस समझौते से अमेरिका एवं जापान के सभी वर्गों के लोग संतुष्ट नहीं थे। जापान में कुछ वर्गों के लोगों का विचार था कि वे मांगों को मानने में आवश्यकता से अधिक झुक गए हैं और कुछ अमेरिकियों की यह धारणा थी कि संधियों की अवधि तक के लिए जापान को एशिया के उत्तर पूर्वी समुद्र तट पर स्थल एवं नौसेना के नियंत्रण का निर्बाध अधिकार प्राप्त हो गया है। बहरहाल कुछ समय के लिए इससे पारस्परिक मतभेद लगभग दूर हो गए।